शुभं भले खरे ओं भले ओं बड़े ब्रह्म भले खड़े ओं भले ओं बड़े एक पत्र क्षाम भी मांग मत मांग मत मांग मत अग्निपत 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 तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी तू न मुड़ेगा कभी कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपत 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 ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है अश्रु सेद रक्त से लथपथ 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 अग्निपथ 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 वृक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े एक पत्र क्षाम भी मांग मत मांग मत मांग मत
बहुत धन्यवाद
बहुत हमेशा अच्छी लगती
है। इन्हीं इसी कैसेट में एक और है उनकी जिसमें उन्होंने बुद्ध भगवान के ऊपर लिखा है कि तुमने जिंदगी भर ये चाहा कि तुम तो जंगलों में गए महल छोड़ के और लोगों ने तुम्हें फिर से महलों में ले आए हर बड़े आदमी के घर में बुद्ध का है जरूर मिलेगा तुमने तो बाल बनवाया लेकिन उन्होंने घुमरा ले बालों सहित तुम्हारा वो बना बना के
बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि उसकी जगह पर मध्यम शरणम गच्छामि मांसम शरणम गच्छामि बहुत भारी बुद्ध नाच कर पूरी किताब ही है।
इसमें ये है कि जब भी कोई जीव श्रद्धा नहीं करता है सच्चे गुरु शास्त्र पर तब उसका वो गुणस्थान पहला गुणस्थान पहले हम ये समझ लें कि गुणस्थान क्या है इनको कुछ भी नहीं मालूम गुणस्थान के बारे में भी सीधा ये समझें कि जीव के भावों की उतार चढ़ाव को गुणस्थान कहते हैं गुण मतलब क्वालिटी स्थान मतलब स्टेबिलिटी के रूप से एक निश्चित गुण में हमारा स्थिर रहना और फिर उससे ऊपर या नीचे हो जाना तो भावों के उतार चढ़ाव को गुण स्थान है और ये बनते कैसे हैं तो मोह और योग की वजह से बनते हैं हमारे भाव मन वचन का एक क्रिया के द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होती है वो कहलाती योग और जो हमारा मोह है वो तो समझ में आने वाली चीज़ है तो इन दोनों की वजह से जो हमारे भावों में उतार चढ़ाव होती है मोह और योग के द्वारा होने वाले भावों के उतार चढ़ाव को गुण स्थान देते जितने जीव हैं उतने प्रकार के परिणाम होंगे लेकिन फिर भी हमने उन सब परिणामों की क्वालिटी को 14 क्लासों में 14 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया तो इस तरह से वे 14 गुण स्थान जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है सच्चे गुरु शास्त्र की उन सबको एक कैडर में रख दिया वो पहला गुण स्थान जिनके अंदर श्रद्धा हो गई सच्चे गुरु शास्त्र की तो उनको चौथे गुण स्थान हो गया ये सीधा पहले से पहुंच गए श्रद्धा का गुणस्थान चौथा गुणस्थान लेकिन ऐसी श्रद्धा है जिसमें अभी व्रत नियम संयम नहीं है सिर्फ श्रद्धा हुई है सच्चे देव गुरु शास्त्र पर तो चौथा गुणस्थान अगर उसी ने श्रद्धा के साथ में थोड़े से व्रत नियम ले लिए तो पांचवा गुणस्थान और अगर उसने महाव्रत ले लिए तो सातवां गुणस्थान फिर अगर वो सातवें गुणस्थान में जब सावधान रहता है तो सातवां असावधान होता है तो नीचे गिर जाता है छठा गुणस्थान इस तरह से इसी तरह जब श्रद्धा हो गई चौथा गुणस्थान हो गया अब अगर उसकी श्रद्धा डमाडोल हो गई तो वह नीचे गिर जाएगा तीसरे में डमाडोल वाली श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों से मिलने वाला मिश्र गुणस्थान कहलाता और उससे भी अगर सम्यक दर्शन की आसाधना कर देवे अर्थात उसका अनादर कर देवे तो नीचे गिरता है तब तो उसका दूसरा गुणस्थान हो जाता है जिसको साधन सम्यक दर्शन कहते हैं सम्यक दर्शन से चित हुआ है इसलिए और आसाधना की है इसकी साधन अब लेकिन ऐसा गुण स्थान है जहाँ रुका नहीं जा सकता ज्यादा समय थोड़े समय रुकता है और फिर नीचे में गिर जाता है इस तरह से समझे कि छत से नीचे गिरे रास्ते में थोड़ी देर के लिए जो रुके हैं जमीन तक नहीं आए हैं वो दूसरा गुण स्थान है कि समय दर्शन से विद्युत हो गए लेकिन अभी मिथ्यात में नहीं आए हैं पहले में तो बीच की स्थिति है दूसरा इस तरह से ये गुण स्थान तो दूसरा और तीसरा गुण स्थान हमेशा जब गिरता है जीव तब बनते हैं छठा गुण स्थान भी जब गिरता है जीव तब बनते हैं बाकी सब गुण स्थान चढ़ने के हैं तो ये उतार चढ़ाव भावों में जरा सा गड़बड़ी थी तो बोल सकेंगे। इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, ये कि हम अपने अंतर को हमेशा संभालते रहें। हम अगर जरा भी चूक जाएंगे तो बाहर से भले ही हम ठीक ठीक दिखते रहें, लेकिन हमारे भीतर परिणाम गिर गए तो हमारा गुण स्थान, हमारी क्वालिटी गिर गई। क्वालिटी है गुण स्थान एक तरह से, तो जैसे जैसे क्वालिटी इंप्रूव होती, जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती, वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ता जाए। जैसे विकार आया उसके अंदर तो निर्भी के गए, चार गुण स्थान श्रद्धा के वो इफेक्टेड होते हैं श्रद्धा के। जैसे पहले गुण स्थान में अश्रद्धा है, जैसे श्रद्धा हुई तो चौथा, श्रद्धा गड़बड़ाई तो तीसरा हो गया, और ज्यादा गड़बड़ाई तो दूसरा, और फिर नीचे आ गए तो पहले। इस तरह से चार गुण स्थान, गड़बड़ गड़बड़ नियम से हम ले लिए तो फिर पांचवें गुण स्थान से यात्रा शुरू हो गई। सम्यक दृष्टि दो व्रति हो गए, अब एक चीज और, कोई व्यक्ति सीधा मिथ्या दर्शन के साथ अभी था, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं थी और उसके भीतर श्रद्धा भी हुई और उसके साथ साथ उसने महाव्रत भी ले लिया, तो क्या होगा, तो सीधे पहले से सात गुण एकदम। कोई व्यक्ति था जिसने कि कुछ भी नहीं था, श्रद्धा हो गई उसकी और उसने अनुव्रत ले लिए, तो सीधा पहले से पांच में जाए, तो क्या हो गया, पहले से चार में जा सकते, पहले से पांच में जा सकते, पहले से सात में जा सकते, चार से पांच में जा सकते, चार से सात में जा सकते, पांच से कहां जाएंगे तो सात में जाएंगे, बस गिरेंगे तो कहां कहां से गिर सकते, तो कहते सात में से गिरेंगे तो छठे, छठे से भी जो है गिर गए अगर मान लीजिए तो पांचवें में, चौथे में, फिर सब नीचे आएंगे, गिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रम से कोई जरूरी नहीं, सात में से सीधा चौथे में भी आ सकता, सातवें से सीधा पहले में, वहां क्रम नहीं है। ये इस तरह से आधे हो गए, सात में स्थान, चौदह में तीन की व्यवस्था होगी एक सामान्य। जब अपन कभी सुने ना एकदम कोई चर्चा चल रही, उन्होंने कहा कि चौथे गुण स्थान की बात है, तो चौथे गुण स्थान का मतलब क्या हुआ कि भैया सत्य देव शास्त्र श्रद्धा है इसलिए उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जिसने व्रत नहीं दिए हैं उसकी चर्चा है, और कहें कि भाई देश व्रत पांचवा गुण स्थान, तो पांचवा गुण स्थान का मतलब हुआ कि सम्यक दर्शन के साथ उसने अनुव्रत भी ले ली है इसलिए कह रहे हैं पांचवा गुण स्थान, सातवां कह दिया तो महाव्रति का हो गया। इस तरह एक अपने को हमने ऐसा कभी भी चर्चा आती है जब सुनते हैं प्रवचन वगैरह में, तीसरे गुण स्थान में आ गए, चौथे में आ गए, तो ये क्या है दूसरा तीसरा, ऐसा है कि जब जब चौथे गुण स्थान में श्रद्धा हो गई, अब श्रद्धा में कहना चाहिए हाँ, जब गिरेंगे श्रद्धा हमारी कुछ कुछ है, कुछ कुछ टूट गई, तो ऐसी मिली जुली श्रद्धा भी है अश्रद्धा भी है, वो कहलाता है तीसरा सम्यक मिथ्या। जैसे दही गुड़ का उदाहरण दिया है कि दही में गुड़ मिला के खा रहे हैं तो न खट्टा है न मीठा है, गड़बड़ा जाती है बहुत जल्दी, गड़बड़ा जाती है, थोड़ी श्रद्धा बनती है फिर उसके बाद गड़बड़ा जाती है, तो श्रद्धा भी है अश्रद्धा भी है, एक बार लगता है कि है तुम्हारा सच्चा, फिर सोचते कि क्या तो क्या पता में जो है वो हो गया, मिक्सअप हो गया, मिली जुली अवस्था तीसरा गुण स्थान। और अगर हमने पूरा सम्यक दर्शन तोड़ ही दिया, श्रद्धा तोड़ दी और अभी पहले में नहीं आए हैं तो बीच में अटक गए कहीं, तो वो दूसरा गुण स्थान साधन सम्यक, असाधन आपका विराधना यदि अनादर, जब सम्यक दर्शन का कोई अनादर कर देता है और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता और बीच की स्थिति को बोलते हैं साधन सम्यक दृष्टि, नाम ही उसका है साधन सम्यक दृष्टि, था तो सम्यक दृष्टि लेकिन उसने अनादर कर दिया है। कभी भी पहले से दूसरे में नहीं जाएगा, कभी भी पहले से तीसरे में नहीं जाएगा, चौथे से गिरेगा तो तीसरे में आएगा, दूसरे में आएगा, पहले से चौथे से सीधा भी पहले में आ सकता, दूसरे में नहीं आ सकता। फिर इसके बाद क्या होता है कि सातवें गुण स्थान के बाद फिर दो तरह के जीव होते हैं सातवें गुण स्थान में, एक तो जो छठे में फिर सातवें में फिर छठे में फिर सातवें में ऐसे हमेशा होते रहते हैं, उनको बोलते स्वस्थान अप्रमत्त, अप्रमत्त तो हैं लेकिन अपने स्थान में गिरते हैं चढ़ते हैं गिरते हैं, लेकिन एक ऐसे भी हैं जो साक्ष्य अप्रमत्त हैं, मतलब जो गिरते नहीं हैं अब सीधा चढ़ने को तैयार है, जो आगे के गुण स्थानों पर बढ़ने के लिए तैयार है उसको कहते हैं सासादर, उसको कहते हैं साक्ष्य अप्रमत्त। पहला गुण स्थान का नाम मिथ्या मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, दूसरे का सासादर सम्यक दृष्टि, तीसरे का सम्यक मिथ्या दृष्टि, चौथे का अव्यक्त सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि तो है लेकिन गति नहीं है, पांचवें का देश गति, छठे का प्रमत्त संयत, सातवें का अप्रमत्त संयत, अप्रमत्त मतलब सावधान, प्रमत्त मतलब असावधान, प्रति तो है महागति लेकिन असावधान हो गया तो कहते छठा, और अगर सावधान हो गया तो फिर सात ऐसा। अब इसके साथ के बाद जो है फिर गुण स्थान विशेष हो जाते हैं, उसको आठवें गुण स्थान को कहते अपूर्व करण, ऐसे परिणाम जो कि अभी तक नहीं हुए हैं उस जीव में प्राप्त किए हैं, अगर तो वो कहलाया आश्रम स्थान जो सातवें स्थान वाला जीव है जो वहाँ पर है मुनि महाराज ध्यान में लीन हो गए और उन्हें चढ़ना शुरू कर दिया। शहनी चढ़ना कहलाता है, ऊंचाई छूना शुरू कर दी तो विशेष परिणाम हो गए तो आठवें पहुँच गए और विशेष परिणाम जो कि फिर नहीं छूटते हैं नीचे नहीं आते तो नौवां स्थान कहलाने लगता उसी को, उसको बोलते हैं अनिवृत्तिकरण। फिर उसके बाद अपनी कषायों को जिन्होंने नष्ट कर दिया अकेला मात्र सूक्ष्म लोभ रह गया तो छीन कषा वो सूक्ष्म सांप्राय नाम का दसवें में चढ़ गए, आठवें में फिर नौवें में क्रम से नहीं आठवें में नौवें में दसवें में। अब अगर उन्होंने अपने जो कषायें थी उनको सबसाइड करके चढ़े होंगे तो उसको बोलेंगे उपशम श्रेणी और अगर उसको नष्ट करके चढ़े होंगे तो बोलेंगे छह छपक श्रेणी ऐसा करके। तो आठवें में नौवें में दसवें में पहुंचे तब तक तो ठीक, अब अगर उसने उस जीव ने उपशम किया होगा तो वो ग्यारहवें में जाए उसको बोलेंगे उपशांत कषाय और अगर उसने छह कर लिया होगा कषाय का तो वो बारहवें पहुंच जाएगा दस से सीधा उसको कहेंगे क्षीण कषाय। ये दो डिवाइडेशन हो जाते हैं यहाँ पर कि टेंथ के बाद में आपको ट्वेल्थ में डायरेक्ट जाना है कि इलेवंथ में जाना है तो इस तरह से तो जिसने शय कर लिया होगा वो ट्वेल्थ स्थान बार में पहुंच जाएगा जिसने शय नहीं करा होगा वो क्या ये शय मतलब नष्ट करना शय मतलब शय से जाएंगे तो बार में उसको क्षीण कषाय कहेंगे और उपशांत कषाय मतलब सबसाइडेशन कर दिया कषायों को थोड़ी देर के लिए। अब क्या होगा जो व्यक्ति कषाय को उपशम करके जाएगा वो ग्यारहवें में जाएगा तो वो कषाय अपना टाइम पूरा होने पर आएगी तो वापस आपने किसी चीज को दबा दिया था तो वो अपना काल पूरा होने पर फिर बाहर आएगी तो जैसे ही बाहर आती तो फिर वो गिरते हैं ग्यारहवें से नीचे आएंगे दस में दस से फिर नौवें आठवें सात फिर हिम्मत करें फिर चढ़े तो फिर चढ़ सकता है अन्यथा अगर चूक गया उसी पहले इतनी मेहनत करने के बाद जीव जो है एक जीवन में दो बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है इसके बाद नहीं चढ़ सकता। उपशम श्रेणी मतलब चढ़ना और उपशम मतलब कषायों को शांत करके नष्ट नहीं किया है शांत किया उपशम शमित कर दी सबसाइडेशन तो सबसाइड करते हैं सप्रेस भी नहीं कहेंगे सबसाइड जैसे कि मठ वाटर में मठ था तो अपन उसमें फिट करी डाल दी तो वो क्या हो गया बीच में बैठ जाएंगे अब कोई भी थोड़ा हिला दिया तो फिर जो पता है इस तरह से तो सबसाइडेशन सबसाइड दूसरी सीढ़ी पे चलो इस वाली सीढ़ी पे चलोगे फिर से तो फिर ग्यारह तक पहुंचे जैसे दो सीढ़ियां रहती साथ में हैं दो सीढ़ी रहती ये पे चढ़ो तो ग्यारह तक पहुंच जाओ और इस वाली पे चढ़ो तो बारहवें तक पहुंच जाओगे ये सब करके चली जाती है छह करके चली जाती है इस तरह से दो सीढ़ियां इस तरह की। फिर क्या होता है कि बारहवें स्थान में छीन कषाय कषाय नष्ट कर दी तो जैसे ही कषाय नष्ट होती है तो तीन जो कर्म और जिनको अपन ज्ञानावरण दक्षिणावरण और अंतराय बोलते हैं ये तो ये सब नष्ट हो जाते हैं और जैसे ही नष्ट हुए तो केवल ज्ञान हो गया बस उसको अपन तेरहवां स्थान मानते हैं। अभी मन वचन काय की क्रिया है इसलिए उनको संयोग योग भी बोलते हैं और कल के दिन जो मन वचन काय का अनुरोध कर देंगे भगवान तब उनको अयोग के भी चौदहवां स्थान बोलेंगे और फिर चौदहवां स्थान से पार हो गए उससे भगवान तेरहवां स्थान और चौदहवां स्थान में आरंभ किया इस तरह से व्यक्ति को जब चाहे कि तेरहवां चौदहवां स्थान तो आनंद अवस्था का है चार घर के कर्मों का नाश कर इस तरह का मन में आ जाना जी बारहवां स्थान और तपोभूमि कर्म का नष्ट करके और कोई छपक श्रेणी वाला जीव पहुंचा होगा बाद में इस तरह एक आइडिया ये मैंने दिया था।
अभी
सातवें स्थान तक हो सकते हैं सात से आगे नहीं बढ़ सकते अब लिखने का तो मैं लिखवा चुका हूँ कल का भर आपने नहीं लिखा होगा है ना कल थोड़ा ही सा था बस सात तक लिख दिए थे है ना सात तक लिख दिए आठ आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां ये मन लिखना और छोटे छोटे मैंने लिखवा दिए थे कल सीढ़ी वाला खेल नहीं होता वैसे ही है पहले से कहाँ जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे इस पर ध्यान रखें अपन पहले से जाएंगे चार चौथे में जाएंगे पांच में जाएंगे सात में फिर चौथे से कहाँ कहाँ जाएंगे तो कहते चौथे से पांच में जा सकते चौथे से सात में जा सकते चौथे से नीचे गिरेंगे तो कहाँ जा सकते थे, तीसरे में जा सकते, दूसरे में जा सकते, सीधा पहले में जा सकते, सात में से कहाँ जा सकते हैं, तो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, सात में से छठे में आएंगे, कोई सात में से पांचवें में आ सकता है। इसी को बोलते हैं कि बाहर में तो अपना जैसे सातवां गुणस्थान हो गया किसी, वो किसको होगा, महाव्रति को होगा, तो बाहर से तो वो महाव्रति है लेकिन भीतर से उसका गुणस्थान गिरा, भाव उसके गिर गए, भाव गिरे तो पांचवा हो, पहले तो छठे में गिरा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर चढ़ जाएगा सातवें में, लेकिन अगर पांचवें में गिरा तो पांचवें में अभी गुंजाइश है, चौथे तक गिर जावे तो सम्यक दृष्टि है, अभी गुंजाइश है, फिर अपने भावों को सुधारेगा तो फिर संयम कर, असंयम का भाव आ जाता है इसलिए उसका गुणस्थान गिर गया। बाहर से तो वेश यम का देव है, संयम का वेश है, लेकिन अगर असंयम का भाव आ गया तो चौथा गुणस्थान हो गया, और अगर असंयम के अलावा भगवान के प्रति श्रद्धा ही छूट गई तो सीधे पहले आ गए, बाहर से वेश तो यम का देव रहा आया लेकिन भीतर से जो है इसके क्षण दिन भर में 2500 बते कव नीचे आ जावे तो फिर चलेगा, समय दर्शन जो है कितनी बार छूट जावे कहा जा सकता, कितनी बार पूर्ण, इसलिए इसको पढ़ने का आज यही है, हम भाव संभालते हैं, भाव ने बिगड़ने देते, नहीं तो बाहर से तो ज्यों करते हैं ठीक है व्रति कहलाओगे लेकिन भीतर से तो गुरु स्थान गिर गया, असंयम का पोषण हो गया, असंयम में सुख लगने लगा, यदि मिथ्यात में सुख लगने लगा तो जीवन भगवान तो जी हैं तो भीतरा ही मनोवेदी कौन खराब हो, वेदी अच्छी है, वेदी अच्छी है ऐसा मन में आ गया, रागी देशी को भी भगवान मान लिया, सोसी क्षण आपका बाहर से तो अच्छी दिखा रहे, आपके चंदन लगाए पूजा कर रहे बढ़िया, मनो भीतर से आप जो है थोड़ा पहले भी स्थान में मिथ्यात में, मिथ्यात पांच प्रकार का होता है जिसमें कि एकांत किसी भी, ये भी अपन को समय में नहीं किया था, मिथ्यात जैसे सम्यक दर्शन की चर्चा तो अपनी करी थी कि सम्यक दर्शन तीन तरह से प्राप्त हो सकता है, कि जब हम कर्मों का क्षय करके प्राप्त करते तो क्षय एक सम्यक दर्शन, जब हम कर्मों का क्षय और उपशम दोनों करके प्राप्त करते तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन, जब हम कर्मों को जिसमें हो नहीं कर्म को विशेष रूप से दर्शन, जब हम दबा के आगे बढ़ते तो उपशम सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, ऐसे तीन प्रकार से ये प्राप्त होता है। मिथ्यात भी पांच प्रकार का है कि जब हम किसी एक ही वस्तु के किसी एक धर्म को लेकर के जिद करके उसी पे टिक जाते हैं, दूसरे धर्म का निषेध कर देते हैं तब वो एकांत है। जैसे कि हमने जीव के बारे में कहा कि जीव का स्वभाव ऐसा है, लेकिन जीव की वैवाहिक स्थिति कैसी है इसका ध्यान नहीं दिया, जैसे मैं सुबह उदाहरण दिया था कि मैं जीव हूँ ये तो निश्चय नहीं की बात हुई, लेकिन मैं मनुष्य हूँ तो वर्तमान में तो मैं पर्याय की अपेक्षा नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ लेकिन मेरे अंदर जीव कौन द्रव कौन सा जीव है, तो जब हम अपने द्रव की तरफ दृष्टि देते हैं तो उस नए को द्रव्यार्थ कहते हैं, और जब हम अपनी पर्याय की दृष्टि देते हैं तो पर्यायार्थ, जब दोनों नयों से कथन किया जावे तो कहलाता ठीक, और एक से किया जाए तो कहलाता एकांत, ऐसा अंत का अर्थ होता है धर्म, एका अंता यस्य विद्यते सा एकांता, और अनेका अंता यस्य विद्यते सा अनेकांता, जिसमें वस्तु के मल्टी डायमेंशन को एक्सेप्ट किया जाए वो अनेकांत, और जिसमें किसी एक डायमेंशन को लेकर के उसी पर जिद की जाए दूसरे का निषेध किया जाए वो एकांत, तो कहते ये भी मिथ्या है। फिर अनेकांत वस्तु को हर डायमेंशन से देखना चाहिए, किसी एक डायमेंशन से देख के और तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पर एक दो पॉइंट ऑफ व्यू तो हैं, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं मनुष्य हूँ ये मेरी मनुष्य पर्याय है, लेकिन स्टैंडर्ड एक्चुअली क्या मैं मनुष्य हूँ तो कहते नहीं ये तो मेरी पर्याय है मनुष्य की है, क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ, तो वो जो जीवात्मा जो हम मान रहे हैं वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समय देखना ये काम अज्ञान अज्ञान छात्र में इस तरह से होता है कि ज्ञानी नहीं है कि देव का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, ये भी साथ है ये भी साथ है, उसको यही मालूम कि हिंसा का प्रभुपण है क्या हिंसा का प्रभुपण है, जिस चाहे को देव मान लेता है और कहता कि मैं तो सबको जान सबको मानता हूँ, इसमें क्या तो अज्ञानता वशा है ऐसा कहता, और जान बूझ के अगर सबको एक देव मानता है तो वही एक मिथ्या है, जो अज्ञानता वश सबको एक समान लेता है सो तो आपके अज्ञानी अज्ञान मिथ्या दृष्टि हो गया, लेकिन जान बूझ करके जिनकी रागी है जो देशी है फिर भी कहता है कि रागी रहो चाहे देशी रहो ये तो सब बराबर है, हम तो सबको मानते सबकी विनय करते तो कहते भाई ना एक मिथ्या अभी तुम्हारी दृष्टि में नहीं मिलता है नहीं वस्तु स्वरूप तुम्हें सही सही मालूम नहीं है इसलिए तुम ऐसा बोलते एकांत हो गया। विपरीत मोक्ष मार्ग जैसा कहा है भगवान ने वैसा स्वीकार न करके ठीक उससे विपरीत को भी मोक्ष मार्ग मान लेना, जो संसार का मार्ग है उसको भी मोक्ष मार्ग मान लेना ये कहना है विपरीत। और मोटी मोटी दो भी एक अग्रहित मिथ्या पर एक ही भेद, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र नहीं है, जो वीतरागी नहीं है, उनको भी रागी द्वेषी देव को भी देव मानना, राग द्वेष का पोषण करने वाले गुरु को गुरु मानना, राग द्वेष का पोषण करने वाले शास्त्र को शास्त्र मानना, ये ग्रही मोटा मोटा सामने देखने वाला ग्रही मिथ्या, और वस्तु तत्व जैसा है उसको वैसा ना मान करके अन्यथा मानना, ये अग्रही तत्व भूल होती है। जैसा जीव का स्वभाव कहा है वैसा नहीं जानता, ऐसे मोटे मोटे। तो ये पहला गुण स्थान है, इतनी सारी चीज हमने डिटेल इसलिए भी बताया था कि थोड़ा पहले यही तो समझ लें कि गुण स्थान किस तरह के कैसे कैसे होते, फिर अपन एक गुण स्थान का समझेंगे तो बहुत डिटेल, चौथे गुण स्थान में भी कितना सारा है, पांचवें में सब में अलग अलग समझते हैं।
जीव के परिणाम
परिणाम अपने क्या गुण स्थान में भी अनंत जीव है, अनंत सबकी एक से मेरे, लेकिन अश्रद्धा सबकी है इसलिए हमने उनको सबको एक एक में डाल दिया, लेकिन छह सब अलग है, कोई विपरीतता की वजह से है, कोई एकांत क्रियावादी दुक्रियावादी अक्रियावादी, ये इतने इतने प्रकार के भेद, 163 भेद, 363 मत है, इतने प्रकार के मिथ्या दृष्टियों के कहकर अनेकांत पे अनेकांत है, अनेकांत भी अनेकांत रूप है, हाँ अनेकांतो विनेकांता अनेकांता प्रमाणार्थी तदेकांतो पिता, ये अनेकांत ऐसा है कि इसका अनेक प्रकार से प्रदूपण किया जा सकता है, और इस अनेकांत में अगर किसी एक तत्व का कथन प्रदूपण किया जाए तो यही अनेकांत एकांत भी
होगा,
सम्य एकांत
उसी से जीव पर
भला तो उसी से होगा कि मैं या की कोई भी चीज, यह पिता ही है पुत्र की अपेक्षा, और किसी बात पे मत जाओ, पिता ही है पुत्र की अपेक्षा, तो पिता ही पुत्र की अपेक्षा भाई नहीं, ये ही लगा दे, और जब अपन ये कहेंगे पिता भी है भाई और किसी का भाई भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पुत्र का वह पिता ही है ऐसा नहीं कह सकते कि अपने पुत्र का पिता भी है और भी कुछ और क्या है, अपने पिता अपने पुत्र का तो पिता ही है और क्या है, और भाई थोड़ी हो सकता है, तो अपने आप क्लियर हो जाता है। तो जब हम किसी एक कथनचित मतलब इन रिलेशन टू, जब हम किसी सापेक्ष कथन करते हैं तब वो सम्यक एकांत होता है, तो अनेकांत का भी विभिन्न अनेक अनेक प्रकार से प्रारूपण किया जा सकता
है, ऐसा होता हुआ तब इसमें तो भी लगेगी
और उसमें भी जो नए सप्तभंगी है उसमें ही लगता है, और जो प्रमाण सप्तभंगी है उसमें भी लगता है, इतना फर्क है। अब वो बहुत कठिन, मैं एक उदाहरण दिया था मैंने कि राम दशरथ के पुत्र हैं, राम दशरथ के पुत्र ही हैं और कुछ नहीं है, लेकिन वे भरत के पुत्र नहीं है, राम दशरथ के तो पुत्र हैं लेकिन भरत के पुत्र नहीं है, तो वे कुछ हैं भी और किसी के नहीं भी, वे पुत्र हैं भी और नहीं भी हैं, हैं वे दशरथ के पुत्र हैं और भरत के पुत्र नहीं है, लेकिन जिस समय वे दशरथ के पुत्र हैं उस समय भरत के पुत्र नहीं है, दोनों बातें एक साथ, इसलिए अस्थि भी है और नास्ति भी है, और फिर कहते हैं कि जिस समय वे दशरथ के पुत्र, इन इस सब के बाद भी बहुत कुछ बचा जो कहा नहीं जा सका, कहाँ कहा गया है अभी तो, और बहुत सारे रिश्ते हैं रामचंद्र जी के बहुत लोगों से, वो कहाँ था, तो कहते हैं अब तक कहा नहीं, चौथा वेद हो गया अब तक, कहते जिस समय आपने कहा के दशरथ के पुत्र है उस समय बहुत कुछ ऐसा छूट गया, ऐसे संबंध जो कहे नहीं गए, तो इसलिए पांचवी चीज हो गई अस्थि अवस्था। फिर कहते कि जिस समय आपने कहा कि वे दस भरत के पुत्र नहीं है उस समय बहुत कुछ ऐसा है जो कहा नहीं गया, तो कहते नास्ति अवस्था। और जिस समय आपने कहा कि दशरथ के पुत्र हैं भरत के पुत्र नहीं है उस समय बहुत कुछ छूट गया जो कहा नहीं गया, अस्थि नास्ति अवस्था। साथ ही तरह से ये सेवन फोल्ड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, जब हम किसी चीज से एक्सप्लेन करेंगे तो सात ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कोई ढंग नहीं एक्सप्लेन कर, तो कहते ये मैंने अनेकांत भी इतने अनेक प्रकार का हो गया कथन करने की शैली से अपवाद कहलाती है, वस्तु कहने के धर्मों को स्वीकार करना अनेकांत, ये मेन मतलब कहना चाहिए इसमें इसको समझना। मैंने इस बारे में कोई वो नहीं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस अपेक्षा कहा, इस अपेक्षा से कहा। और अगर ये हमने उसमें चर्चा करी थी जैनिस इन फैमिली में, क्या अगर हम दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीख जाए कि दूसरे ने किसी न किसी अपेक्षा, अगर किसी ने हमें कहा कि आप बड़े चोर हैं तो ठीक है, उसने क्या बुरा कहा, किसी अपेक्षा से कहा होगा। अगर बहुत आध्यात्मवादी हो गए तो वो कहेगा मैं तो चोर ही हूँ, पर पदार्थों का ग्रहण करती रहता हूँ जबकि मेरा स्वभाव नहीं है तो चोर कहूँ, आध्यात्मिक चोर कहूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से वैसे भले ही कोई भी चीज नहीं चला। और ये तो छोड़ो, मैंने इस जीवन में चोरी नहीं करी होगी, पहले जीवन में चोरी करी है इसलिए उस अपेक्षा से लगाते वो चोर तो कह दो, कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगता। आपने एक उदाहरण दिया था ना नीरज जी ने कि दुकानदार के पास में ग्राहक आवे और दुकानदार ज्यादा पैसा बतावे तो दुकानदार भी रुपये के देता कि भाई तुम तो बड़े घर निकले, तुम तो बड़े बेईमान हो, तो बुरा ही मानते अपन उस समय क्योंकि अगर धंधा में कहीं आएगा भी बुरा मान लेंगे, और अगर कोई और कह देगा कि बेईमान हो तो नहीं स्वीकार करते। उस समय याद कर लेना चाहिए उसकी अपेक्षा कह, कोई भी कथन बिना अपेक्षा के कोई नहीं, सापेक्ष ही होगा कथन। सर्वथा कथन अगर करेंगे तो फिर हम वस्तु के स्वभाव को नहीं करेंगे। ये इस जानी काम के साथ अर्थ भी लिखवा दूंगा, इस पे अपन ने टच किया, थोड़ा सा शॉर्ट में टच किया था। यहाँ पर भी मैं शाम को रोज थोड़ी देर दो दो तीन दिन लेते हैं, सैटरडे संडे मेडिकल कॉलेज के रहते हैं कुछ लोग, हाँ थोड़ा जनरल बेस तो बुनियाद तो हो ही जाए। अब और कोई चीज तो रहने नहीं, और कोई चीज समझना हो तो वो उसको बताने, तो कल शनिवार कल क्या लगे सोचा नहीं है, स्थान तक हो गया। ध्यान के बारे में भी मैं चारों प्रकार का ध्यान लिखा नहीं है, बस वो ध्यान लिखना हो तो चारों प्रकार के ध्यान के भेद लिख लें तो एक काम हो। अरे इतना क्लियर, उसके बाद भी दूसरा उदाहरण ले लें, टास्क किया हमने तो बस फिर बाकी तो चार ऐसे ही बनाना पड़ेंगे सब बने एक दूसरे से कंबाइन होकर के। पहला दूसरा ओरिजिनल है, कोई चीज़ है कोई चीज़ नहीं है, दोनों की मिली हुई अवस्था है। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि इनविजिबल है और अनकहा रह गया है, उसको बोलते हैं अवक्त। ये चौथा फोल्ड बनता है, फिर उसके बाद तो हर एक के साथ उस फोल्ड को जोड़ दीजिएगा। जब हमने है कहा था तब भी बहुत कुछ रह गया था कहने के लिए, जब हमने नहीं कहा था तब भी बहुत कुछ रह गया था, जब हमने नहीं है और है दोनों कहा था तब भी बहुत कुछ रह गया था। फोर्ड वैसे ही बन जाते हैं उसी के साथ जोड़ करके, सिंगल होते हैं और डबल जो लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं उनको बहुत जल्दी वन एक सिंगल सिंगल फोर्ड और डबल डबल और एक तीन का मिला करके एक अस्थि नास्ती फिर दोनों का अस्थि नास्ती फिर एक अवक्तव्य फिर अवक्तव्य के साथ अस्थि अवक्तव्य के साथ नास्ती अवक्तव्य के बाद अस्थि नास्ती। इसके लिए एक और उदाहरण दिया है कि जब सिक्का आपने फेंका ऊपर उछाला सिक्का तो हेड गिरेगा, पॉसिबिलिटीज है, हेड नहीं गिरेगा टेल भी हो सकता, हेड और टेल दोनों नहीं, बीच में ऐसा हो जा सकता है अस्थि भी नहीं नास्ती भी नहीं हेड भी नहीं टेल भी नहीं बीच में जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कहीं नहीं जाए और ऐसे दीवार से ऐसे अटक जाए, क्या करेंगे कहते अब तब कहा नहीं जा सकता किस तरह से गिरेगा। हमने तो ये कह दिया कि कोई ने कहा हेड गिरेगा कोई ने कहा टेल गिरेगा कोई ने कहीं सेंटर का ऐसे लुढ़क के चला जाएगा, इसके बाद भी बहुत कुछ जो कहा नहीं जा सकता। बस इस तरह से जो है ये फोल्ड बनेंगे कि जब हेड गिरेगा तब भी बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज थी, जब टेल गिरा है तब भी बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज थी, जब सीधा चला गया हेड और टेल नहीं गिर करके तब भी पॉसिबिलिटीज बहुत थी, तो वो उसी को अपना कैसे भी घटा दीजिए। जीव है ये एक्चुअली घटाना है अपने लिए, ये तो अपने सामान्य उदाहरण घटाना है सात तत्वों पर, सात तत्वों को जानने के उपाय हैं ये जीव उत्कर्ष जीव अजीव आश्रय वन संबंध निद्रा और वो इन सात तत्वों को कैसे हम घटाएंगे उसके लिए। ज्ञान गुण की अपेक्षा जीव है, दर्शन गुण की अपेक्षा जीव नहीं है, सिर्फ एक ज्ञान गुण चेतन है जीव में। तो जीव अपने ज्ञान गुण की अपेक्षा से तो जीव है, अन्य गुणों की अपेक्षा से जीव नहीं है, अस्थि भी है नास्ति भी है। इस तरह से उसमें गठित करते हैं, फिर बाकी कौन तो बन जाते हैं अस्थि नास्ति। अनंत गुण है उसमें, सिर्फ एक गुण है ज्ञान गुण जो चेतन है, बाकी सब चेतना को ही ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण, ज्ञान गुण वैसे तो ज्ञान और दर्शन दो गुण है, अब उसमें से जो है चेतन और अचेतन, तो ज्ञान चेतन है बाकी दर्शन अचेतन है, और अनंत गुण है जैसे सब अचेतन है।
अनंत गुणों में एक दूसरे का रूप है,
पर्याय
अनंत गुण, अनंत गुणों में अंश मतलब रूप जैसा है,
एक रूपता है ऐसा, एक रूपता अनंत गुणों में, तो वो एक रूपता तो उस आत्मा की अपेक्षा से आधार की अपेक्षा है, क्योंकि आधार आत्मा ही है, इसलिए उसके सारे गुण उसी के और गुणों के समूह को तो द्रव के द्रव को अलग से तो जीव है, तो अनंत गुणों के समूह का नाम भूत जीव द्रव है, एक रूप का जीव के गुण और गुणी में भेद नहीं करेंगे तो एक रूप का, और गुण गुणी में भेद करेंगे तो फिर अनेक रूप का होगा। व्यवहार है, जब हम भेद का कथन करेंगे तो व्यवहार होता है, जो ज्ञान धर्म की मत कहिएगा, ये कहेंगे कि जब हम डिवाइड हुए हैं तो कैसे डिवाइड हुए, श्वेतांबर दिगंबर कैसे डिवाइड हुए, फिर उसके बाद दिगंबर में भी विषम तेरापन विषमपन वो पूछ रहे हैं, विषमता है वो दिखाया नहीं था मैंने कि क्या करना हो, पत्र वन चीज देख कर उनकी मुख्य मान्यताओं में भेद लिखना हो तो लिख लीजिए, अभी लिखा है दिगंबर और श्वेतांबर में मेन अंतर क्या है, मेन अंतर है कि स्त्री मुक्ति मानते हैं श्वेतांबर, दिगंबर नहीं मानते, श्वेतांबर मानते हैं कि सग्रंथ मुक्ति, ग्रंथ सहित अर्थात कपड़े के साथ मुक्ति हो सकती, वस्त्र सहित मुक्ति मानते हैं, दिगंबर कहते नहीं वस्त्र सहित मुक्ति संभव है, जब भी कपड़े से मुक्त नहीं हुए तो शरीर से कैसे हो गए, संसार से कैसे हो, तो वो ये मानते। और तीसरी चीज मेन मेजर अंतर है कि केवल ज्ञान के बाद भगवान आहार करते हैं, ये श्वेतांबर मानता है दिगंबर में, ये मेजर है, वैसे चौदह बात है, चौदह पर तीन बातें मुख्य, इन पर जो है डिवाइजेशन हो गया एक समय था। अब इन मुद्दों को नहीं भी उठाएं, कोई अपना काम चल सकता है, कोई नहीं है इन पर बात, हाँ इन पर बात करें। हाँ मल्लीनाथ को तीर्थंकर मल्ली भाई माना है, इस तरह भगवान महावीर स्वामी की शादी मानी है, तो ये मेन मेजर हो गए। फिर बीसपन तेरापन कैसे बने, मुझे श्वेतांबर वाला नहीं मालूम, दिगंबर बीसपन तेरापन कैसे बने, तो जो विषमताएं आई उससे बना बीसपन, जो ओरिजिनल पंथ था उसमें विषमताएं आई, बारहवीं शताब्दी में विषमता आनी शुरू, कौन कौन सी विषमता है, तो विषम पंथ ही बिगड़ करके बीस पंथ कर लिया, जो ओरिजिनल था वो तेरह पंथ है और जो विषमताएं आई वो बीस पंथ, तो कैसे बना बीस पंथ, जिसमें बहने मतलब स्त्री प्रक्षाल कर सकती है, पहली विषमता है, क्षेत्रपाल पद्मावती इत्यादि को पूजना शुरू कर दिया, दूसरी विषमता है, पंचामृत अभिषेक शुरू कर दिया मूर्ति पर, तीसरी विषमता है, फिर जो इलक शुक्लक इत्यादि हैं उनके लिए अर्घ चढ़ाना शुरू करें, जबकि वो उस पद से मोक्ष नहीं पा सकते, फिर किस बात का पद प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ, उस पद से अनर्घ पद मिल सकता है क्या, जिसके लिए आप चढ़ा रहे हैं तो वो अर्घ चढ़ाना शुरू करें, तो इस तरह से ये चौथी विषमता आ गई। विषमताएं हैं इस पर से डिवाइडेशन हो गया, हाँ, और सचित्र पूजा,
फल फूल और रोटी पानी सब चढ़ा सकते हैं भगवान को। ये सब चढ़ा सकते हैं भगवान को, दाल रोटी सब्जी भी चलती है दक्षिण में, फल फूल इत्यादि सब कच्चे
सब दक्षिण में।
सब भगवान के ऊपर जो है यहाँ पर फूल रखे हैं, भगवान के यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर फूल रखे हैं, सब फूल फूल लगा देते हैं, चढ़ाते भी हैं, भगवान को भी रख देते हैं, हाथ भी रख देते हैं, चंदन लगा करके अभिषेक करते हैं पूरी मूर्ति पर।
दाल रोटी तो
दाल रोटी रखते हैं दक्षिण
दक्षिण रखते हैं
यहाँ नहीं रखते राजस्थान में जयपुर में तो इस तरह ये डिवाइडेशन हुआ। और तारण पंथ, तो तारण पंथ जो है देव और गुरु को नहीं मानता, सिर्फ शास्त्र को, और शास्त्र में भी जो तारण स्वामी के लिखे शास्त्र हैं 14 उन्हीं को मानता और किसी नहीं। हम पहले ये सोचते थे कि शास्त्र तो हमारे कम से कम होता है, ठीक है, हमने तत्वार्षिक वगैरह सब मानते हैं, वेद और गुरु 14 किताबें और तारण स्वामी जो है वे मानते हैं, ये तो समय के साथ
समय
के
साथ।
हाँ, 15वीं शताब्दी में जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और कोई साधु नहीं हो सकता था, तो उन्होंने कहा भैया शास्त्र बचा लो, तो शास्त्र बचाने की उसमें फिर उन्होंने कहा आप शास्त्र ठीक है और ये सब नहीं हो सकते। आज वर्तमान में भी वो यही कहते हैं, परिस्थितिवश ही सारी चीजें चेंज हुई थी। अब कटवा की मूर्ति हटी, उन्होंने कहा आप कटवा की मूर्ति में पानी डालोगे खराब हो जाएगी, पहले थोड़ा तेल घी डालो, घी से भी करो अभिषेक, दूध से करना, दही से करना, शक्कर से करना, फिर पानी से बाद में करके धो करके रख देना, थोड़ा उससे बची तो रहे, तो सेफ्टी के लिए किया था। अब उनने जो है परंपरा बन गई कि परंपरा में
तो पद्मावत के फल तो हटी की
मेन तो वही है, मैंने फल चढ़ाना और हमें तो सब भगवान तो वो गड़बड़ है। चढ़ाई भी नहीं है, मन बन गया
उसके बिना प्रवृत्ति बनेगी कैसे, जब तक भीतर अगर शक्ति दृष्टि हो तो भगवान कायम करेगा ऐसा, जब दृष्टि का दोष आया तभी जो ऐसा मन में आया, नहीं तो अपने भगवान को बहुत आगे कभी बढ़ गए भगवान होते उसके
तो भी सती एक संगे वही एक में काम में चले थे तो भी चौबीस में भी नहीं चल रहा था तो फिर और गया।
इससे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति की दृष्टा नहीं है, व्यक्ति के अंदर जो
एक बच्ची नहीं ढूंढा एक अगरबत्ती नहीं सारा
और कहो बनाने में लगी हूँ जिंदगी और लिखने में तो क्या, इसमें लिखा हुआ है कि सम्यक दर्शन होने के बाद पूर्व कोटि की आयु तक मिथ्यात्व के श्राप रहा आया, लेकिन क्योंकि उसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया था तो मरने के अंत में पहले पुनः सम्यक दर्शन करके केवल ज्ञान था। इसको कहते दिखी मन, जिसने एक बार मार्ग देख लिया है, जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया है, उसको फिर कोई संसार में फंसा नहीं सकता।
ये
हमने तो मोक्ष लक्ष्मी को माना, हमने संसार की लक्ष्मी को लक्ष्मी दो हाथ चार पाँव वाली किसके लिए,
किसके लिए,
किसके लिए अगरबत्ती किसको लगा है सवाल पहले तो ये बताओ, फिर अगरबत्ती की बात में बताओ किसको लगा कौन से भगवान नहीं सही हम ये नहीं कह रहे आप ये बताओ कि किसको लगा रहे हैं अभी देखते हैं चर्चा जो चल रही है कि कौन सा लगा रहे हैं लक्ष्मी जी स्पेशली हम पूछ रहे थे किस पर लगा लक्ष्मी जी को नहीं लगा महावीर भगवान की मूर्ति है उसके सामने अगर अगरबत्ती भी ना लगाएं उसकी जगह पर धूप इत्यादि का उपयोग करें तो नहीं भी करें अगरबत्ती लगाई तो कहाँ लगाई पहले ये देखो और फिर शुद्ध है कि नहीं है पहले ये देखो अगरबत्ती कहाँ शुद्ध है
कभी शुद्ध होगी
अभी मालूम पड़ा है कि ऐसी बस्ती है ये जो कोयला है वो वहाँ का है सब उसमें जो जलाने पे बसता है
वहाँ का है
जितनी इसके बढ़ यहाँ लगा रहे थे अशुद्ध
ये लोग धनतेरस भी मानते हैं धनतेरस मानते
हैं धनतेरस है वो उन्हें बता दिया धनतेरस भगवान जो विरोध करने चले गए आप तेरस भी धन हो गए
धन हो
इसलिए पैसा जोड़ने की नहीं भगवान ने आप समझ रहे हैं भगवान ने वो समुच्चरण छोड़ दिया आप हम सोने सोचे अपन की पूरी लक्ष्मी को वो छोड़ कर समुच्चरण का वैभव उससे बड़ा वैभव किसी का नहीं वो छोड़ के चले गए थे हमने जोड़ना शुरू कर देखा
इसलिए धनतेरस कहलाए
इसलिए धनतेरस उसका अपन लगाते हैं आवाजी से भगवान जो मोक्ष होने वाला है इसकी खुशी में दीपक जलाते हैं तेरस को चौदस को भी जलाते हैं
Gracias.